Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Om Gyanati Mirandasya Gyanati Shalakaya Chakshari Muritamina Tasimha Shri Gurave Namaha.
Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
तो ये स्थान जिसका नाम है टोटा गोपीनाथ, क्या नाम है? टोटा क्या? टोटा गोपीनाथ. तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आए, और जगन्नाथपुरी में जब वो वहां निवास करते थे जहां हम आज सुबह दर्शन किया, तो वहां जाते थे तो उनको द्वारका या कुरुक्षेत्र की याद आती थी, क्योंकि वो क्या है, श्री मंदिर है. श्री मतलब लक्ष्मी या राधा रानी भी होता है, लेकिन प्रमुख रूप से उस मंदिर में लक्ष्मी देवी का प्रमुख अधिकार है, और वह ऐश्वर्य के भाव से भगवत सेवा होती है जगन्नाथ की. जगन्नाथ वह राजा के वेश में है, राज वेश धारण करते हैं और राजा के मूड में निवास करते, इतने सारे सेवक आदि है और इतना सारा ऐश्वर्यशाली भोग वगैरह स्वीकार करते हैं और बड़े बड़े वस्त्र आदि पहनते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां जाते थे तो उनको हमेशा कुरुक्षेत्र या फिर द्वारका का आभास होता था. तो वहां से चैतन्य महाप्रभु का हृदय वहां अच्छा नहीं लगता था. जैसे राधा रानी जब 100 साल के विरह के बाद कृष्ण को मिलने के लिए कुरुक्षेत्र में गए थे, तो वह 100 साल के बाद जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण उतने उनको आकृष्ट करने वाले नहीं लगे, क्योंकि कृष्ण ने कौन सा वेश धारण किया था? राजवेश, क्योंकि वो द्वारका के राजा हो गए थे. अभी उन्होंने वृंदावन को छोड़ा था, ब्रजवेश को छोड़ा था. कृष्ण वृंदावन से जब 11 साल की आयु में बाहर निकले तो वो बांसुरी यशोदा माता के पास छोड़ के चले गए थे. कृष्ण बांसुरी लेके नहीं आए थे, लेकिन कृष्ण जब द्वारका में मिले इन ब्रजवासियों को, तो कृष्ण 16,100 रानियों के साथ बैठे हुए थे, और जैसे कृष्ण को पता चला अरे ये दो वृंदावन वासी आए हैं बैलगाड़ियों में उनको मिलने के लिए, तो कृष्ण के साथ बहुत सारे सीनियर पर्सनालिटीज थे, उनको उन्होंने छोड़ा और दौड़ने लगे. देखा कि दूर से नंद महाराज, यशोदा, श्रीमती राधिका, ग्वालबाल आदि आ रहे थे, तो कृष्ण यशोदा माता के पास गए और उनके गोद में जाकर बैठे. लेकिन कृष्ण ने कौन सा वेश धारण किया था? राजवेश. बहुत सारे मुकुट आदि, हीरे जवाहरात, शूज वगैरह पहने हुए थे, तो किसी को वो वेश आकर्षित नहीं कर रहा था. बल्कि यशोदा माता जैसे कृष्ण को देखती है तो वो उसके हृदय में वात्सल्यता की जो भावना है वो उमड़ उठती है, उनके स्तनों से दूध बहने लगता है, वो रोने लगती हैं और कृष्ण का आलिंगन करती. फिर नंद महाराज आते हैं, वो भी आलिंगन करते, 100 साल के बाद मिल रहे थे. तो अभी देखा कि ये सारे लोग मिल रहे हैं, तो गोपियां बहुत दूर खड़े थे. गोपियों ने देखा कि अब ये सारे सीनियर लोग हैं, उनके सामने कृष्ण से कैसे मिला जाए. तो फिर रोहिणी माता बहुत चतुर थी, उन्होंने बहाना बनाया, वहां से इन सबको ले गई, वसुदेव देव के, नंद महाराज और यशोदा आदि को, और कृष्ण को फ्री किया. फिर कृष्ण को गोपियां अप्रोच करती हैं, ये जो ब्रज बालाएं हैं कृष्ण को लेती है और उनका हाथ पकड़ती है और कृष्ण के हाथ में बांसुरी देती है, मोर पंख लगाती है, उनके उन वस्त्रों को निकालती है, श्रृंगार करती है. हाँ, क्योंकि गोपियों को आकर्षित करने वाले भगवान कौन है? गोपीनाथ है. कौन है? गोपीनाथ. इसलिए श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तट स्थित कर्षन वेणु सुनेर गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु नः. कि जो गोपीनाथ है वो वंशी वट में खड़े रहते हैं, अपने जो बांसुरी है उसका वेणुनाद जब वो करते हैं तो सारे गोपियों को आकर्षित करते हैं. इस प्रकार से भगवान गोपीनाथ का श्रृंगार कुरुक्षेत्र में गोपियां करती हैं, उनको बांसुरी आदि और ब्रजवेश धारण कराती हैं और उनको रथ के ऊपर बिठाती हैं, और क्या करती है, फिर सारे उनको खींचती हैं. खींचते हुए कहती हैं कि कृष्ण लैया ब्रजे जाबो ये भाव अंतरे, कृष्ण को लेकर हम वृंदावन जाएंगे. राधा रानी ने कहा कि मेरा जो मन है वो वृंदावन है, आप क्या कीजिए, हे कृष्ण आप मेरे हृदय में, मेरे मन में आपके चरण कमलों का उदय कीजिए. तो ऐसे जो गोपीनाथ है वो गोपियों के नाथ है, स्वामी है. तो जब तक हम अपने जीवन में कोई हमारा नाथ नहीं है तो हम तब तक क्या है, अनाथ है। जब माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो सारे अनाथ ही रहते हैं, जीवन भर अनाथ रहते हैं, अपने स्वामी को ढूंढते रहते हैं, हर समय अलग अलग किसी देवता की शरण ग्रहण करते हैं, किसी बॉस की शरण ग्रहण करते हैं, किसी डॉक्टर की शरण ग्रहण करते हैं। अपने जीवन के अलग अलग आयु में हम अलग अलग नाथ चेंज करते रहते हैं। हमारी स्थिति कुत्ते के समान या एक फुटबॉल के समान है, जिसका कोई नाथ नहीं है, फुटबॉल को यहाँ से लात मारी वहाँ। हाँ, तो वैसे ही जीव जब तक वो कृष्ण की शेल्टर नहीं ग्रहण करता तब तक वो एक कुत्ते के भांति है और या तो फुटबॉल के भांति है। प्रभुपाद ने कंठीमाला एक बार बहुत बड़ी धारण की थी, तो अमेरिका में एक न्यूज रिपोर्टर कहते हैं, स्वामी जी ये क्या पहना है आपने, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद ने कहा ये बेल्ट है, जैसे कुत्ते के गले में बेल्ट होता है वैसे ये हम किसके डॉग है, कृष्ण के डॉग है। तो वो रिपोर्टर हैरान हो गया, प्रभुपाद ऐसे ऐसे उत्तर देते थे, नए नए रिपोर्टर उनको समझ में आ जाता था। तो ऐसे गोपियों के ये नाथ जो चैतन्य महाप्रभु ने इनको प्रकट किया है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ, क्योंकि जगन्नाथपुरी में दोनों धाम हैं, एक तो द्वारका भी है और दूसरा क्या है, ब्रज वृंदावन भी है। इसलिए महाप्रभु जो वृंदावन की भावना का आनंद अनुभूति करने के लिए यहाँ आते थे, इसको ओरिजिनली कहते हैं यमेश्वर टोटा, यमेश्वर महादेव है। यमराज ने महादेव की पूजा की थी, यहाँ से 2 मिनट वॉक करेंगे तो बहुत सुंदर शिवजी का टेम्पल है बिल्कुल नीचे। हाँ, वो जो शिवजी है जिनका नाम है यमेश्वर महादेव, वो जगन्नाथ टेम्पल का जितना भी वो सीए है, जगन्नाथ के सीए कौन है, यमेश्वर महादेव। आज भी जगन्नाथ के जो साल भर के खर्चे हैं, कितना डोनेशन आया, कहाँ एक्सपेंस कितना हुआ, कितना लक्ष्मी बचा है, वो सारा किसके सामने पढ़ते आकर पंडाज, यमेश्वर महादेव के सामने। तो ऐसे जो यमेश्वर महादेव ये जो स्थान है, ये पूरे एरिया को यमेश्वर टोटा कहा जाता है, और जो यमेश्वर टोटा के कारण ही हाँ इस स्थान को टोटा गोपीनाथ कहते हैं। तो जो गदाधर पंडित थे वो यहाँ निवास करते थे, चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन की अनुभूति करने के लिए वो यहाँ आते थे, क्योंकि यहाँ जो सामने आप देखेंगे जो मिट्टी है, जो रेत है समंदर की, उसके थोड़े छोटे छोटे पहाड़ बने हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु जब इसको देखते थे तो उनको गोवर्धन का क्या होता था, आभास, ये उसको चटक पर्वत कहते हैं। तो कहते थे ये गोवर्धन है, वो दौड़ते थे गोवर्धन का आलिंगन करने के लिए जो कृष्ण से अभिन्न है। और फिर जो समंदर के किनारे से यहाँ से चलते थे तो चैतन्य महाप्रभु जब नीला पानी देखते थे समंदर का तो उनको यमुना का स्मरण हुआ आता था। एक बार तो चैतन्य महाप्रभु ने समंदर में एक संध्या के समय में अपने भक्तों के साथ चल रहे थे, सारे भक्त चल रहे थे लेकिन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन का स्मरण करते हुए अकेले खो गए। तो भक्त लोग आपस में बातें करते हुए चल रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने पीछे से समंदर में जंप लगाई और चैतन्य महाप्रभु गायब हो गए। यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर चैतन्य महाप्रभु का दिव्य देह प्राप्त हुआ, जहाँ एक मछुआरे ने क्या किया था, मछली डालने के लिए जब जाला फेंका तो उसके जाल में बहुत, उसने सोचा आज तो बहुत बड़ा मछली सा हाथ लगा है। और यहाँ भक्त लोग रो रहे थे, कहाँ गए चैतन्य महाप्रभु, कहाँ गए, ढूंढ रहे थे पूरी रात। फिर पूरा दूर 30 किलोमीटर तक समंदर के किनारे ढूंढते गए तो वहाँ एक मछुआरा दिखाई दिया, लेकिन वो मछुआरा क्या बोल रहा था, हरी हरी, क्या बोल रहा था, जोर से बोलिए, और जोर से। तो ये स्वरूप दामोदर ने कहा ये मछुआरे को एक ही भूत ने पकड़ा है, महाप्रभु रूपी भूत। तो वो गए, मछुआरा ये क्या हो रहा है कि मछुआरा हरी 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 कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहा है। तो उसने कहा, वो उनको पकड़ा, क्यों कह रहे हो, कहते हैं मैंने जब से एक मछली को पकड़ा है तो तब से उसका स्पर्श करने मात्र से मेरी जीवा रुक नहीं रही, वो भूत है, उस भूत ने मुझे पकड़ लिया है। तो ये समझ गए कि ये कोई और भूत नहीं है, हमारा एक भूत गुम हो गया था कल, वो मिल गया है। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि मैं भूत उतारने वाला हूँ। तो महाप्रभु की जो सेक्रेटरी थी स्वरूप दामोदर, उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ ना क्या कहते इसको, गाल में चाटे मारे 2-4 और कुछ मंत्र पढ़ने लगे, कहा कि आपका भूत उतर गया, पहले आप भूत दिखाओ कहाँ है। तो वो गया, वो उन्होंने कहा आप लोग भी उसका स्पर्श मत करो, उसकी आंखें खुली हुई है, वो भूत देखता है या तो आलिंगन करता है। तो जब वो गए तो देखा कि चैतन्य महाप्रभु है वहाँ। चैतन्य महाप्रभु मूर्छित अवस्था में आंखें खुली है, शरीर के जॉइंट्स खुले हुए हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इतना अधिक भावावेश में आते थे कि जितने भी बॉडी में जॉइंट्स है वो सारे खुल जाते थे, हाथ ऐसे कई लंबे हो जाते थे, मतलब उनको उठाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, तो वो कैसे जुड़ जाए। तो डिवोटी जाते थे और महाप्रभु के कान में जोर से बोलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे महाप्रभु इस धाम में दोनों चीजों को अनुभव करते थे, द्वारका का भी और दूसरा ब्रज का भी। तो महाप्रभु यहाँ उनके जो गदाधर पंडित है, जो साक्षात श्रीमती राधिका है कृष्ण लीला में, गदाधर पंडित यहाँ रहते थे। गदाधर पंडित का अटैचमेंट श्रीमद् भागवतम से था, वो श्रीमद् भागवतम को इतना अलग अलग प्रकार से सुनाया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु रोज, एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि चैतन्य महाप्रभु आकर श्रीमद् भागवतम को सुनते नहीं थे। प्रभुपाद ने इसलिए हमें दिया है नित्यम भागवत सेवया। तो महाप्रभु आते थे रोज और रोज एक ही स्टोरी 100 बार सुनते थे। कितनी बार? हमें थोड़ा सा रिपीटेशन हो जाता है तो बोर होने लगते हैं, क्योंकि कृष्ण कथा में आकर्षण नहीं है, कृष्ण कथा में रस नहीं है, टेस्ट नहीं है। तो महाप्रभु आते थे और दो ही भक्तों का कथा सुनते थे, एक था प्रहलाद चरित्र और दूसरा था ध्रुव चरित्र। तो इन दोनों के बारे में, ये श्रीमद् भागवतम के हीरोज हैं, तो इनके बारे में सुनते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे रेत में बैठे थे पेड़ के नीचे, गदाधर पंडित सुनाते जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आ गए और इतना विरह महसूस करने लगे कृष्ण के प्रति कि वो कहने लगे, कहा मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहा जाओ कहा पाओ ब्रजेंद्र नंदन। वो कहते कि मेरे प्राणनाथ कहाँ चले गए, मैं क्या करूँ, कहा जाओ जिसके द्वारा ये जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है उनकी मुझे प्राप्ति हो सकती है। वो कहते कि उनके बिना मैं अपना जीवन खो रहा हूँ या बर्बाद कर रहा हूँ। तो ऐसे महाप्रभु उस क्लास के बीच में विरह का अनुभूति करने लगे और जहाँ बैठे थे वहां की जो मिट्टी है वो खोदने लगे, हाथ से खोदने लगे, तो उनको एक मुकुट नजर आया, विग्रह का जो ऊपर का मुकुट है वो नजर आया। तो उन्होंने देखा कि ये कौन है, कृष्ण है। तो उन्होंने कहा, गदाधर गदाधर, मुझे ना बहुत बड़ा ट्रेजर मिला है, खजाना मिला है, वैल्यूएबल खजाना मिला है, गदाधर क्या तुम इनको अपने साथ रखना चाहते हो? गदाधर पंडित ने कहा, हाँ मैं अपने साथ रखूंगा। तो देखा इन दोनों ने जब खुदाई की तो क्या नजर आए, कृष्ण गोपीनाथ निकले। जब विग्रह को निकाला उनके साथ ललिता और राधिका भी थी, जिनके साथ राधा रानी का जो वीणा है कच्छपी वीणा वो भी था। तो जब ये तीनों निकले तो गदाधर पंडित को कहा कि गदाधर ये आपके लिए है। गदाधर पंडित बहुत खुश हो गए। गदाधर पंडित ने उनको लिया और उनकी सेवा वगैरह स्वीकार की। तो भगवान तीन अलग अलग लीलाएं हैं कि ये आपने देखा, यहाँ भगवान वैसे सुबह मंगल आरती में आते हैं तो भगवान के गले में ये है लॉकेट है चंद्र का, आलोल चंद्र कल सद्वन माल्य वंशी, उनकी माला कैसी है, चंद्रमा का अर्ध चंद्र का वो लॉकेट धारण किए हुए हैं। और भगवान पद्मासन में बैठे हैं, आलसी व्यक्ति की तरह नहीं बैठे, कैसे बैठे, पद्मासन में बैठे, बिल्कुल ठीक। हाँ तो ऐसे भगवान शास्त्रों में अलग अलग जगह इसका वर्णन है, ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो गोपीनाथ का वर्णन आता है, कहते कि जब सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा ने इस रूप में भगवान को देखा था कमल आसन पर बैठे हुए जिसमें वो अपनी वेणु का वादन कर रहे थे। और दूसरा श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस दिया जाता है कि जब गोपिकाएं कृष्ण के साथ बंसीवट में रास क्रीड़ा कर रहे थे, एक साथ नृत्य कर रहे थे, तो हर गोपी के साथ कृष्ण थे। तो गोपियों को हरेक को ये अहंकार हो गया कि अरे कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है, मैं कितने फॉर्चुनेट हूँ। तो भगवान को एक चीज सहन नहीं होती अपने भक्तों की, वो क्या है, घमंड या अहंकार। हाँ तो उसको कहते हैं निज जन ध्वन ध्वंस अस्मिता। गोपी गीत में कहते हैं कि अपने भक्तों का जो घमंड है अहंकार है भगवान उसको टुकड़े टुकड़े करते हैं, हमेशा भगवान सहन नहीं करते, किसी ना किसी को कारण बना देंगे। तो ऐसे ही जो गोपियां थी उनको बहुत घमंड हो गया कि कृष्ण हमारे संग है, तो गोपियों ने वो रास क्रीड़ा को छोड़ दिया, कृष्ण ने छोड़ दिया और कृष्ण चले गए अप्रकट हुए। फिर सारी गोपियां उस रात्रि में पूर्णिमा की रात्रि में ढूंढते हुए जंगल में वृंदावन के जंगलों में भ्रमण करने लगी कृष्ण कृष्ण कहते हुए, और वे फाइनली कृष्ण फिर प्रकट हो जाते हैं और जो गोपिकाएं हैं फिर कृष्ण को जैसे मिलती है, फिर से कृष्ण ने पीताम्बर आदि धारण किया था, फिर गोपियां सारी अपना ऊपरी जो उत्तरीय वस्त्र होता है हाँ उसको निकालती है और नीचे डालती है सारी गोपियां, और उसका मुलायम एक बैठने के लिए आसन बनाती है, और कुमकुम आदि जो उनके सर और शरीर में लगा था उसको लगाती है, उससे श्रृंगार करती है और कृष्ण को वहां बिठाती है, और कृष्ण को बिठाकर एक टक गोपियां कृष्ण के सौंदर्य को निहारती रहती है, और जब उनकी उनकी स्तुति आदि करती है तो कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियों, आपका ये जो प्रीति है, आपकी ये जो सेवा की भावना है मेरे प्रति, ये इतनी अत्यंत उत्कृष्ट है कि मैं इस सेवा भावना को चुका नहीं सकता, बल्कि मैंने गीता में तो ये वचन दिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम, जो जिस भावना से मेरा भजन करेगा उतनी ही भावना से मैं भी उसका भजन करता हूँ, लेकिन हे गोपियों आप ऐसा मेरा भजन कर रही हो, ऐसा मेरे प्रति समर्पित हो कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए गोपियों को कहते हैं कि मैं आपका हमेशा के लिए क्या हूँ, ऋणी हूँ। तो जो सिटिंग फॉर्म था गोपियों के बीच में वो कौन है, गोपीनाथ है, इसलिए वो बैठे हैं, इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो गदाधर पंडित है उनका वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु इस जगत से अप्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु कहाँ अप्रकट हुए, गोपीनाथ में। तो शास्त्र नरहरि सरकार अपने ग्रंथ भक्ति रत्नाकर में कहते हैं, वो कहते की करीबो कोथा जावो वाक्य नाही स्पुरे, हराइलाम गोरा चांद गोपीनाथेर घरे, गोपीनाथेर घरे गेला दर्शन करेते, हराइलाम गोपीनाथेर अंगे थे। कहते हैं कि क्या कहूँ क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग में यहाँ आए गोपीनाथ का दर्शन करने के लिए संध्या के समय, और बहुत से जोर शोर से कीर्तन हो रहा था, और अचानक उस कीर्तन के बीच में ये जो गौर सुंदर है चैतन्य महाप्रभु निकल जाते हैं, उनके ऊपर एक उत्तरीय वस्त्र था महाप्रभु ने धारण किया था, और वो सीधा गोपीनाथ के शरीर में जाकर लीन हो जाते हैं, और उनका जो ऊपरी वस्त्र था वो गोपीनाथ के शरीर में इस प्रकार से लग जाता है। तो सारे डिवोटीज हैरान होते हैं कि महाप्रभु हमें छोड़कर चले गए। तो आज भी पुजारी मंगल आरती के समय में दिखाते एक पांव का एक भाग है जिसमें कहते कि चैतन्य महाप्रभु ने एंट्री किया इस डीटी में। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब अप्रकट हुए हैं तो गदाधर पंडित को बहुत दुख हुआ, वो महाप्रभु के विरह में उनको बुढ़ापा आ गया एक प्रकार से। तो फिर उन्होंने सोचा अब भगवान तो खड़े थे, गोपीनाथ खड़े थे शुरुआत में ऐसा कहा जाता है, तो कैसे उनकी सेवा करूं मैं। उन्होंने सोचा अभी मैं तो उनको ना चंदन लगा सकता हूँ माथे में, ना उनको मुकुट धारण करा सकता हूँ, ना उनको माला पहना सकता हो, तो मैं ये सेवा नहीं कर सकता। वो सोच रहे थे किसी और पुजारी को रखता वो करेगा। तो गोपीनाथ संध्या के समय में कहते रात्रि में, अरे गदाधर तुम कल मेरी सेवा करके देखो, मैं तुमसे ही सेवा करना लेना चाहता हूँ, तुम क्यों किसी और को एंगेज करना चाहते हैं। तो गदाधर पंडित दूसरे दिन सुबह मंदिर में जाते हैं, दरवाजे को खोलते हैं तो देखते हैं कि वही गोपीनाथ गदाधर पंडित से सेवा स्वीकार करने के लिए बैठ जाते हैं। मतलब कि बैठ जाते मतलब भगवान प्रेम से क्या होते हैं, प्रेम के आगे झुक जाते हैं। भक्त का जो इतना सर्विस सेवा की भावना है, प्रेममय सेवा की भावना, जिसके आगे भगवान जो गोपीनाथ है वो झुक जाते हैं। तो इस प्रकार से गदाधर पंडित से वो सेवा लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, ऐसे महान महान आचार्य यहाँ आते थे और गोपीनाथ की सेवा करते थे, प्रार्थना करते थे। बल्कि एक बार नित्यानंद प्रभु जो साक्षात बलराम है, नवदीप से 30 किलो व्हाइट राइस अपने सर में रख के कहा लाए थे, यहाँ हम 30 किलो का कोई बैग लाएंगे भगवान के लिए, ट्रेन में नहीं ला पाएंगे। नित्यानंद प्रभु बंगाल से कितने दिन लगते, ट्रेन से 12 घंटे लगते हैं, हाँ। तो इतने लंबे स्थान से नित्यानंद प्रभु चावल लेके आए एक दिन, और साथ में वस्त्र लेके आए गोपीनाथ के लिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं जब भी आप वैष्णवन से या गुरु से मिलने जाते हो या फिर विग्रह का दर्शन करने जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाए। उससे क्या होता है, भगवान के साथ हमारा आदान प्रदान शुरू होता है। जब आप कुछ अर्पित करते हो भगवान को, तो भगवान भी आपसे रेसिप्रोकेट करते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु लाए, उन्होंने जगन्नाथ का दर्शन करने गए। नित्यानंद प्रभु तो साक्षात बलराम है। नित्यानंद प्रभु जब पहली बार जगन्नाथ का दर्शन करने गए, तो जहां हम अभी अंदर गए थे ना, वो ऊपर चढ़ गए और बलराम का आलिंगन किया और उनका माला निकाला और खुद पहना नित्यानंद प्रभु ने अल्टर के अंदर जाकर। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु आए यहाँ गोपीनाथ के लिए चावल लाया। कही गदाधर, है गदाधर देखो मैंने गोपीनाथ के लिए चावल लाए है, उनके लिए वस्त्र लाया है। गदाधर पंडित बहुत खुश हो गए। गदाधर पंडित ने कहा कि हे नित्यानंद प्रभु, आप तो लग रहा है कि वैकुंठ से ये शुभ्र चावल लेके आए हो। तो गदाधर पंडित ने वो वस्त्र गोपीनाथ को पहनाए और फिर गदाधर पंडित बहुत एक्सपर्ट कुक थे। उन्होंने कहा कि आज इन चावलों के द्वारा मैं बहुत अच्छा राइस बनाता हूँ, फिश बनाता हूँ गोपीनाथ के लिए। तो जंगल से कुछ शाक लिया, फिर इमली के पत्ते ले लिए, उनसे उन्होंने शाक सब्जी बनाई, चटनी बनाई और राइस बनाया। तो जब ऑफरिंग करने के लिए रखा, तो चैतन्य महाप्रभु जहां गंभीरा में हम कल गए थे, वहां से दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा, गदाधर गदाधर, हे नित्यानंद, आप दोनों ही खा रहे हो, मुझे इनवाइट नहीं किया आप दोनों ने। उन्होंने कहा कि मैं कैसे ऐसा मौका छोड़ सकता हूँ जहां नित्यानंद प्रभु ने लाए हुआ चावल हो और गदाधर जैसे यानी कुक किया हो और गोपीनाथ को ऑफर किया हो, तो ये अमेजिंग जो प्रसाद है उसको मैं छोड़ नहीं सकता। कहते यहाँ ये जो सुगंध है वो मुझे वहां से खींच के लाई है। तो फिर यहाँ आते हैं और फिर बैठते हैं और चैतन्य महाप्रभु फिर ग्रहण करते हैं और वो कहते हैं कि जो भी गदाधर के द्वारा या गोपीनाथ के प्रसाद को ग्रहण करेगा, उसके हृदय में ये जो कृष्ण भक्ति है या गोपीनाथ के लिए जो प्रीति है वो स्थापित हो जाएगी। तो इस प्रकार से गोपीनाथ विशेष विग्रह है। हाँ, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने तो 3 गीत लिखे हैं, गोपीनाथ। हाँ, मम निवेदन सुनो, हे गोपीनाथ आप मेरी प्रार्थना सुनो, मैं तो काम का दास हो गया हूँ, ये जो लस्ट है मुझे क्या कर रही है, खा रही है। तो गोपीनाथ आप ऐसी कृपा करो जिसके द्वारा मैं भौतिक बीमारी से क्या हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। तो ये विशेष विग्रह है और गोपीनाथ के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, उस बुक में भी आती है। और हम बहुत पहले भी आए थे तो बलराम नाम के जो पुजारी थे, तो उन्होंने कहा था कि उनके जो पिता है एक दिन पान रखना भूल गए भगवान को रात्रि की सेवा में। तो वो समय भगवान गोपीनाथ स्वप्न में आते और वो कहते, अरे चंचल कही के, हाँ मेरी सेवा करते हो तो हमेशा चंचल रहते हो, कभी कुछ करते हो कभी कुछ करते हो, हाँ पान रखना भूल गए। भगवान ने उनको डांट दिया और वो हमेशा फिर रखने लगे। तो ये विशेष चैतन्य महाप्रभु का स्थान है और चैतन्य महाप्रभु रोज आते थे यहाँ गोपीनाथ का दर्शन करने के लिए और गोपीनाथ का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो ऐसे छोटा गोपीनाथ भगवान विशेष दयालु है और कृपामय है। और टोटा ये उड़िया शब्द है, टोटा का मतलब है बगीचा या गार्डन। तो जिस गार्डन में गोपीनाथ रहते हैं उसको टोटा गोपीनाथ कहते हैं। टोटा गोपीनाथ के, दादर पंडित के, श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।